أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. منطق کے حوالے سے مقدماتی بحث جو اس کے تاریخچے کے بارے میں تھی، اس کی اہمیت کے بارے میں تھی، وہ ہماری تمام ہو گئی ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اگرچہ تاریخ علم منطق کے حوالے سے اور بھی مزید باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی آپ مطالعات حتماً کریں گے جو منطق کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. آج جس بحث کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تعریف علم منطق، کہ علم منطق کی تعریف کیا ہے. علم منطق کی تعریف جو اس کتاب میں بھی بیان ہوئی ہے، یہ جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ذکر ہے، المنطق کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی بالکل یہی تعریف ہے. اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی جو منطق مظفر ہے اس کے مطابق ہے. اکثر مطالب جو ہیں وہ ان کے ایک جیسے ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اکثر جگہ پہ حتیٰ ترجمہ ہے یہ منطق مظفر کا. فرق یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے، یہ فارسی میں ہے. لیکن منطق مظفر اور اس میں ایک اور فرق جو ہے وہ یہ کہ یہ تعلیمی اعتبار سے منطق مظفر سے بہتر ہے، یعنی اس میں تعلیمی روش کو مد نظر رکھا ہے. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تھوڑا سا تکرار زیادہ ہے، مطلب زیادہ ہے، اس وجہ سے بعض اوقات طالب علم جو ہے وہ خستگی کا احساس کرتا ہے. یہاں پر فقط اپنے ٹو دا پوائنٹ جو ہیں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی وضاحت کی گئی ہے. علم منطق کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں؟ دقت کرنی ہے، یہ جو تعریف میں چند قیدیں ذکر ہوں گی یہ اہمیت کی حامل ہیں. یوں ہے منطق کی تعریف، منطق عالی علم ہے، عالی حمزے کے ساتھ، کلی قواعد کا مجموعہ ہے کہ ان قاعدوں کو صحیح استعمال کر کے فکر میں خطا سے بچ سکتے ہیں. یہ علم منطق کی تعریف ہے. بس اس میں تین اہم ترین قیدیں آئی ہوئی ہیں، ایک عالی ہے، دو قواعد کلی کا مجموعہ ہے، اور تین اس کا صحیح استعمال فکر سے بچاتا، فکر میں غلطی سے بچاتا ہے. اب ہم نے اس درس میں ان تین قیدوں کی وضاحت کرنی ہے. ایک اعتبار سے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علوم عالی حمزے کے ساتھ، اور ایک ہے علم اصالی، الف سواد الف اور لام یا، اصالی اصل سے. بس علوم کی دو قسمیں ہیں، بعض علوم عالی ہوتے ہیں، ابزار ہیں، ٹولز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مقدمے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض علوم جو ہیں وہ اصالی ہوتے ہیں، خود ہدف ہے. بس علوم عالی کی پہچان کیا ہے؟ آپ کو کب کیسے پتا چلے گا کہ فلانا علم ابزاری ہے، عالی ہے، مقدمے کے طور پر ہے، ٹولز کے طور پر ہے، جو بھی آپ تعبیر کر لیں اس کو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم ذاتی طور پر مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس علم کا وجود کسی اور علم کی وجہ سے ہے. اگر وہ دوسرا علم نہ ہوتا تو یہ والا علم بھی وجود میں نہ آتا. अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये इल्म आली है। मसलन मिसाल क्या है उसकी, आप अगर इल्मुल हिसाब को और इल्मे जबर को अगर मद्देनजर रखें, अलजबरा जो है वो क्यों वजूद में आया, ताकि हिसाब में मौजूद मसाइल के अंदर वो मदद करे, उन मसाइल को हल करे। अलजबरा की तभी जरूरत पेश आई है। अगर हम फर्ज कर लें कि रियाजी नाम का और हिसाब नाम का जो है वो इल्म मौजूद ही ना होता, तो अलजबरा वजूद में आता, असलन वजूद में ना आता। बस अलजबरा ये जो इल्म वजूद में आया है, इसका वजूद हिसाब इल्म हिसाब के वजह से है। बस इसका नतीजा निकलता है इल्म जबरा जो है वो क्या है, आली इल्म है। दुरुस्त है। लेकिन इल्म जो है वो हिसाब क्या है, वो असाली है क्योंकि जातन मतलूब है। ये किसी इल्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर वो इल्म होगा तो रियाजी और हिसाब होगा, व इल्ला नहीं होगा ना। अगर बाकी उलूम फर्ज करें, फलसफा ना हो, फलाना ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी इसके हिसाब की हमें जरूरत पड़ेगी कि मतलूब है, हमें जातन मतलूब है। बस पहचान आली और असाली की जाती तौर पर मतलूब होना और जाती तौर पर मतलूब ना होना है। अगर जाती तौर पर मतलूब नहीं है बल्कि किसी और इल्म की वजह से है, तो इसका मतलब है वो आली है और असाली वो इल्म है जो जाती तौर पर मतलूब है। हां ये बात याद रहे कि मुमकिन है कि ये असाली इल्म भी किसी और इल्म का मुकदमा बन जाए, लेकिन लेकिन इस असाली इल्म का वजूद जो है उस इल्म के वजूद पर मौकूफ नहीं है, बस ये आली नहीं कहला सकता। बता दे मसलन इल्म हिसाब को हमने कहा कि ये क्या है, असाली इल्म है, लेकिन ये इल्म हिसाब क्या होता है, सोशल साइंसेस में भी इस्तेमाल होता है। मसलन आप इल्मुल इक्तिसाद के अंदर जाएं, इकोनॉमिक्स के अंदर आप जब जाते हैं मसाइल को हल करते हैं, इकोनॉमिक्स के बाद मसाइल हिसाब के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी हिसाब मदद करता है इकोनॉमिक्स के बाद मसाइल को हल करने के लिए। दुरुस्त है। बस यहां पर इल्म हिसाब जो है वो मुकदमा बन रहा है किसके लिए, इल्म इक्तिसाद के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। दुरुस्त है। लेकिन ये इस मुकदमे की वजह से आली इल्म नहीं बनेगा। क्यों? इस वजह से कि इक्तिसाद के ऊपर इसका वजूद डिपेंड नहीं करता कि अगर इकोनॉमिक्स ना हो तो हिसाब वजूद में नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स ना भी होती इस कायनात में, तब भी जो है इल्मुल हिसाब जो है वो इल्म मौजूद होता, क्योंकि इसकी और बहुत सारी सारी जरूरियात हैं जो इंसान बशर के अंदर जो है ये जरूरत महसूस होती है। दुरुस्त है। बस ये बात ध्यान में रखे कि अगर इल्म ऐसा नहीं है कि इल्म असाली किसी इल्म का मुकदमा नहीं बनता, उसका मुकदमा होना या ना होना पहचान नहीं है असाली व आली की, बल्कि असाली होना व आली होना इसकी पहचान यह है कि वो जाती तौर पर मतलूब है या नहीं है। इल्म जबरा जो है ये क्या है, ये जाती तौर पर मतलूब नहीं है क्योंकि ये इल्मुल हिसाब की वजह से आया है। अगर इल्मुल हिसाब वजूद में ना होता तो अलजबरा भी वजूद में ना आता, लेकिन इल्मुल हिसाब जो है वो ऐसा नहीं है। यहां तक बात वाजी हो गई। बस यहां तक हमें आली और असाली का माना समझ में आ गया कि आली किसे कहते हैं और असाली किसे कहते हैं। अभी आकर हम देखते हैं कि इल्मुल मंतिक जो है वो कौन सा इल्म है, इल्म आली है या इल्म असाली है। तो हमने तारीफ में ये बात वजाहत कर दी इस बात की कि मंतिक इल्म आली है, आली है, मुकदमे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, खुद मतलूब नहीं है इल्म मंतिक।
चूंकि इंसान ने इस्तेदलाल करना है, लिहाजा इल्म मंतिक की जरूरत है। क्योंकि इंसान ने तफक्कुर करना है, बस इल्म मंतिक की जरूरत है। दुरुस्त है? अगर इंसान चाहे कि मैं इस्तेदलाल ना करूं, अपनी जिंदगी को वो बगैर इस्तेदलाल के ऊपर जो है वो कायम कर ले, तफक्कुर करना मसलन छोड़ दे, तफक्कुर इस माना में करना छोड़ दे, मसलन वो क्या नाम है इसका, अकली तफक्कुर करना छोड़ दे, तो इल्म मंतिक की जरूरत नहीं पड़ेगी इंसान को। दुरुस्त है? बस इल्म मंतिक जो है वो आली इल्म है, क्योंकि इल्म मंतिक के जरिए हम इस्तेदलाली मतालिब की तरफ जो है वो जाते हैं, कदम उठाते हैं और उनको हासिल करते हैं। एक और नुक्ता जो इल्म मंतिक के बारे में इसी के जिम्मन में अर्ज करते हैं वो ये कि चूंकि इल्म मंतिक इस्तेदलाल करना और तफक्कुर में खता से बचाने के कवायद फराहम करती है और ये काम इंसान हर इल्म में अंजाम देता है, पस तमाम उलूम मोहताज हैं किसके? मंतिक के। यानी मंतिक के, अगर कोई उसूली है वो भी मंतिक का मोहताज है, अगर कोई फैलसूफ है वो भी मंतिक का मोहताज है, अगर कोई सोशल साइंसेज में है तब भी वो मंतिक का मोहताज है। जितने भी आप उलूम ले लें सब मंतिक के मोहताज हैं, क्योंकि वो मंतिक ने इस्तेदलाल करना सिखाना है, मंतिक ने जो है वो तफक्कुर में खता करने के कवायद को सिखाना है। इस वजह से कि तमाम उलूम मोहताज हैं इल्म मंतिक के, इसको खादिमुल उलूम कहा जाता है, नौकर है सारे उलूम का, सबकी खिदमत करता है, ये सबकी मुश्किलात जो है वो हल करता है। बस एक कैद हमारे लिए वाजह हो गई कि इल्म मंतिक आली इल्म है, इससे क्या मुराद है। दूसरी कैद जो इसके अंदर हमने बयान की थी वो ये कि कवाएदे कुलिया का मजमुआ है। अब सवाल यहां पर ये उठता है, कोई बंदा आपसे सवाल कर लेता है कि ये खसूसियत मंतिक की तो नहीं है फकत, बल्कि सारे उलूम आप ले लें कवानीने कुलिया पर मुश्तमिल होते हैं। असलन उलूम कहते ही उनको हैं कि जो कानूने कुली बयान करे। मसलन आप अगर फिजिक्स के अंदर जाते हैं तो फिजिक्स में जो फार्मूला जिक्र किया जाता है आए वो कुल्ली नहीं है, केमिस्ट्री इसी तरीके से है, हिसाब इसी तरीके से है, सोशल साइंसेज के अंदर जो बहसें होती हैं, ह्यूमैनिटीज जो उलूम हैं उनके अंदर जो कवायद बयान होते हैं सब कुल्ली होते हैं। फिर आपने ये कैद क्यों लगाई कि इल्म मंतिक कुल्ली कवायद व कवानीन का मजमुआ है? जवाब उसका यह है कि फर्क है मंतिक के कवायदे कुल्लिया में और बाकी उलूम के कवायदे कुल्लिया में। पहला फर्क, मंतिक के अंदर बयान शुदा कवानीन व जवाबित अकली होते हैं और इसमें इस्तिस्ना मौजूद नहीं होता। अकली होते हैं और इनमें इस्तिस्ना नहीं होता। बाकी उलूम में कवानीन कुल्ली होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं आकर जो है वो इस्तिस्ना लग जाता है। आप अगर साइकोलॉजी के अंदर एक कानून बनाते हैं और कुल्ली कानून बनाते हैं लेकिन आप बाद में देखते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई इस्तिस्ना मौजूद होता है कि अगर फुलानी तबीयत का मसलन हुआ तो वो इस कानून में शामिल नहीं है। कानून कुल्ली है लेकिन फलाने फलाने जो है ना वो इसमें शामिल नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी उलूम के अंदर चले जाएं आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तिस्ना मिल जाएगा, लेकिन मंतिक ऐसे कवायदे अकली का मजमुआ है ایسے قواعد کا مجموعہ ہے جو عقلی ہیں، اور عقلی قواعد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں استثناء نہیں ہوتا، یعنی منطق میں بیان شدہ قاعدہ کبھی بھی آپ اس میں استثناء نہیں دیکھیں گے. کہ مثلا فرض کریں تعریف کا یہ قاعدہ ہے، استدلال کرنے کا یہ قاعدہ ہے، ہاں ممکن ہے فلانے حالت میں جا کر یہ بدل جائے، نہیں، ہمیشہ یہ قاعدہ رہے گا، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. بس ایک فرق ہو گیا علوم کے اندر، باقی علوم میں بیان شدہ قوانین کلیہ وہ عقلی نہیں ہے اور یہ عقلی ہے منطق کے، اور اس میں استثناء نہیں ہوتا منطق کے قواعد میں. دوسرا فرق، باقی جو علوم ہیں وہ کیا ہیں؟ قراردادی ہیں. اب اس کو انگلش یا مثلا اردو میں کیا آپ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں. مثلا آپ اگر سوشیالوجی کے اندر قوانین بناتے ہیں تو سوشیالوجی کے قوانین کس سے، کس کے مطابق ہوتے ہیں یا کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ اجتماع کے بارے میں ہوتے ہیں. اجتماع خود اپنے اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ قوانین وضع کرتا ہے، یعنی خود وضع کرتا ہے اس کو، اور پھر وہ قانون جو ہیں وہ اتنے راسخ ہو جاتے ہیں پھر اس کے مطابق جو وہ زندگی گزارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قراردادی، کہ انسان نے خود طے کیا ہے کہ اس قانون کے مطابق چلنا ہے. مثلا ایک قانون یہ بنا ہے کہ اگر آپ نے زندگی کو منظم رکھنا ہے تو خرید و فروش کا قانون ہونا چاہیے، کہ ایک چیز انسان کی ملکیت ہو، اگر دوسرے کی ملکیت میں دینی ہے تو حتماً اس کو بیچا جائے. یہ جو لین دین کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو قانون حاکم ہے، آئے تکوینی ہے؟ نہیں، بشر نے خود اپنے لیے، اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، تنظیم کرنے کے لیے اس قانون کو بنایا ہے. ایگریمنٹ ہے. بس باقی علوم کے جو قوانین ہیں تقریباً اکثریت، اگر تمام نہ بھی کہوں اکثریت تقریباً، وہ کیا ہیں؟ قراردادی ہیں. لیکن علم منطق کے قوانین یہ واقعیت کی طرف ناظر ہوتے ہیں، یعنی ان قوانین کو بیان کرتی ہے علم منطق کہ جو پہلے سے تکوینی طور پر کائنات میں موجود ہیں. جیسا کہ پہلے ہم نے تاریخ علم منطق میں بحث کی ہے کہ انسان تکوینی طور پر جو ہے وہ منطقی ہے، کیونکہ استدلال کرتا ہے، کیونکہ تفکر کرتا ہے، وہ استدلال کے جو قوانین انسان جو ہے فطرتی طور پر استفادہ کرتا ہے وہ پہلے سے ایک واقعیت کے عنوان سے موجود ہے. علم منطق نے آ کر کیا کیا ہے؟ اس واقعیت کو آ کر تدوین کر دیا، کتابی شکل دے دی. جیسا کہ مثلا فزکس قانون وضع کرتی ہے یا قانون کے بارے میں بتاتی ہے کہ کائنات میں ایسے ہے؟ بتاتی ہے. اگر فزکس کہتی ہے یا مثلا کیمسٹری بتاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ مرکب ہے H2O کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیمسٹری جو ہے وہ، اس کے اندر علماء نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ آج کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ پانی مرکب ہے H2O کے ساتھ. نہیں ہے ایسا. بلکہ وہاں پر واقعیت موجود تھی، کیمسٹری نے آ کر کیا کیا، آ کر اس کی تحلیل کر کے یہ نتیجہ دیا کہ یہ جو واقعیت ہمارے سامنے ہے اس کی حقیقت H2O ہے. پھر یہ قاعدہ کلیہ ایک بن جاتا ہے. بس قراردادی ना होने में वाले ये वाले उलूम है, मतलब फिजिक्स के अंदर जो कवानीन है वो करारदादी नहीं है।
नहीं
नहीं है, वाकईयत की तरफ नाजिर है। दुरुस्त है, लेकिन आप दूसरे उलूम को अगर मद्देनजर रखते हैं तो वहां कहीं ना कहीं करारदाद मौजूद होती है। बस दूसरा फर्क जो उलूम के साथ इल्म मंतिक का है वो ये कि कवाएद मंतिक जो है वो करारदादी नहीं है बल्कि वाकईयत की तरफ नाजिर हैं, और वाकईयत के अंदर मौजूद कवानीन को इल्म मंतिक ने बयान किया है, उसको उसके बारे में खबर दी है, उसकी तौसीफ की है। दुरुस्त है, बस कोई बंदा ये ना कहे आगे मतलब फिजिक्स अगर करारदादी नहीं है बस वो मंतिक और फिजिक्स में फर्क नहीं रहेगा कवायदे को लेकर, क्योंकि हम पहले फर्क बयान कर चुके हैं कि फिजिक्स के कवानीन अकली नहीं है लेकिन मंतिक के कवायद क्या हैं, अकली हैं। दुरुस्त है, ये जो मिसाल आपको दी है ये फकत ये बात समझाने के लिए दी है कि मंतिक के कायदे वाकईयत की तरफ नाजिर हैं, इस बात को समझाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की मिसाल आपको दी है। मतलब है बस मिसाल की तरफ जो है वो तवज्जो रहे, किसी और की तरफ, किसी और मतलब की तरफ जहन में ना जाए इसमें आकर। तीसरी जो कैद हमने लगाई थी वो क्या है, वो ये लगाई थी कि कवाएद मंतिक का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को सही फिक्र देता है, यानी इंसान खता नहीं करता, सही फिक्र करता है अगर उसको सही इस्तेमाल करें। यहां से हम ये बात समझ जाते हैं कि फकत मंतिक का पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि कवायद को पढ़ने के बाद फिर उसको इस्तेमाल में भी लेकर आए और उनको दकीक अंदाज में क्या है उसको तथबीक करने की कोशिश करे, बस ये कैद हमने इसलिए लगाई थी ताकि इस मतलब को वाजे कर सकें। यहां तक हमारे लिए तारीफ इल्म मंतिक वाजे हो जाती है। फिर दोबारा तारीफ इल्म मंतिक की तरफ पलटते हैं। तारीफ इल्म मंतिक हमने क्या की कि मंतिक एक आली इल्म है, मजमुआ है कवायदे कुल्लिया का, के अगर इन कवायदे कुल्लिया को दुरुस्त इस्तेमाल किया तो जहन फिक्री खता से महफूज रहेगा। यह है इल्म मंतिक की तारीफ और उसकी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। इसके बाद जो साहिबे किताब वारिद होते हैं फिक्र की तारीफ और उसकी हकीकत को बयान करने में, फिक्र किसे कहते हैं, फिक्र जहन का मजहूल को मालूम बदलने के लिए कोशिश करना फिक्र कहलाता है। यह बात अलग है कि कभी इस कोशिश का नतीजा सही मिलता है और कभी इंसान इस कोशिश के नतीजे में सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, इससे अभी सरोकार नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि फिक्र की तारीफ क्या है कि जहन का मजहूल को मालूम में बदलने की कोशिश करना यह फिक्र कहलाता है। अगर यह तलाश, यह कोशिश सही कवायद के जरिए अंजाम पाई तो नतीजा सही मिलेगा। हाँ, जो कि हमने पहले ऊपर बात की है कि अगर कायदों को सही इस्तेमाल करोगे तो खता से बचोगे। अगर कोई बंदा तलाश तो कोशिश तो करता है लेकिन कायदे से ही उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करता, रियायत नहीं करता उन जवाबित की जो मंतिक ने जिक्र किया, तो लिहाजा नतीजा भी सही नहीं ले हासिल कर सकेगा। بہرحال فکر کی تعریف اتنی ہی ہے، مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے ذہن کا کوشش کرنا، یہ فکر کہلاتا ہے. اب یہ فکر مجہول کو معلوم بدلنے کے لیے، معلوم میں بدلنے کے لیے پانچ مرحلوں کو طے کرتی ہے. پہلا مرحلہ مشکل کا پیش آنا. اگر مشکل ہی نہ ہو تفکر کس چیز پہ کرنا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی چیز مجہول ہی نہیں ہے تو پھر معلوم اس کو کیا بدلنا ہے؟ آپ کے سارے آپ مثلا اگر کسی کے پاس ہر چیز معلوم ہو تو خوب اس نے فکر کیا کرنی ہے؟ فکر اصطلاحی جو منطق کے اندر ہے. بس پہلا جو مرحلہ کیا ہے؟ مشکل کا ہونا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مشکل کی نوعیت کو جاننا. یہ مشکل ہے کس قسم کی؟ یہ مشکل ریاضی کی ہے، یہ مشکل فزکس کی ہے، یہ مشکل جو ہے وہ فلسفے کی ہے، یہ مشکل جو ہے وہ سائیکالوجی کی ہے، سوشیالوجی کی ہے، کس کے ساتھ مرتبط ہے یہ؟ کہ کون کی کس قسم کی مشکل ہے میری؟ یعنی کون سی چیز مجہول ہے ان علوم میں، کس علم سے یہ تعلق رکھتا ہے کہ جس کو میں نے معلوم میں بدلنا ہے؟ بس دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے مشکل کی نوعیت کو پہچاننا. درست ہے؟ اب تیسرا مرحلہ، پہلے دو مرحلوں میں کیا یہ چیز انجام پا گئی، ہمیں مشکل پیش آئی، ہمیں پتا چل گیا کہ مشکل کس نوعیت کی ہے. اب یہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، فکر یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ پہلے جو دو مرحلے ہیں یہ مقدمہ ہے فکر کے، یہ فکر کے مرحلے نہیں ہیں بلکہ فکر کرنے کا مقدمہ ہے. یعنی یہ دو ہوں گے تو فکر کرنے کی نوبت آئے گی، اگر یہ دو نہ ہوئے تو فکر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یعنی اگر انسان کو مشکل پیش نہ آئے تو فکر کی نوبت نہیں آئے گی، اگر مشکل پیش آئے لیکن اس مشکل کی نوعیت کو نہ پہچان پائے تو فکر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. کیونکہ جب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری فکر کس قسم کی ہے تو اس کو حل کیسے کرے گا؟ واضح ہے؟ بس پہلے دو مرحلے فکر نہیں کہلاتے بلکہ مقدمہ فکر کہلاتے ہیں. اب یہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، کوشش شروع ہوتی ہے ذہن کی، یہ فکر کا. اب فکر کے آگے جو باقی ماندہ تین مرحلے ہیں وہ فکر کہلاتے ہیں. پہلا مرحلہ جو کہ تیسرا مرحلہ ہے، فکر کا پہلا مرحلہ ہے، کلی طور پر کتنا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے. اس تیسرے مرحلے میں عقل مجہول سے معلوم کی طرف چلی جاتی ہے. کون سے معلوم کی طرف؟ وہ جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف معلومات حاصل کی ہیں. اس میں فزکس کے بارے میں معلومات ہیں، کیمسٹری کے بارے میں معلومات ہیں، انسان کے بارے میں معلومات ہیں، کائنات کے بارے میں معلومات ہیں، سب مختلف علوم کے معلومات آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کو جب پتا چل گیا کہ میری مشکل کس نوعیت کی ہے تو آپ پھر اپنے اس سٹور کے اندر جائیں گے کہ جہاں پر آپ نے معلومات کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. بس پہلا مرحلہ فکر کا جو کہ کلی طور پر تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ آپ اس مشکل کی نوعیت کو جاننے کے بعد اپنے اس سٹور روم کی طرف جائیں گے جہاں پر معلومات کا ذخیرہ ہے، تاکہ وہاں سے کیا کریں، ان معلومات کے اندر اس مشکل کی نوعیت والی معلوم کو حاصل کریں کہ جو اس مشکل کو حل کرے جا کر. یہ دوسرا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انہی معلومات کے اندر تلاش و کوشش کرنا. یہ چوتھا مرحلہ ہو جائے گا کلی طور پر، اور فکر کا یہ دوسرا مرحلہ ہو جائے گا. معلومات کے اندر تلاش کرنا، کوشش کرنا، ان معلومات کو حاصل کرنے کی کہ جو مددگار ثابت ہوں مجہول کو معلوم بدلنے میں. चूंकि मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात स्टोर हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ किस्म के शोबों से ताल्लुक रखती हैं, मैंने हर किस्म की मालूम से तो अपने मजहूल को नहीं बदलना आकर। यानी ऐसा तो नहीं है कि मैं रियाजी की मुश्किल को फिजिक्स के जरिए हल करूं, फिजिक्स की मालूमात के जरिए ना। रियाजी की अगर मुश्किल है मेरे पास, तो मैं उन्हीं मालूमात से इस मुश्किल को हल कर पाऊंगा कि जो रियाजी की मालूमात होंगी, यानी पहले से जो मेरे पास मालूमात मौजूद है उन मालूमात से मदद हासिल करूंगा ताकि मैं इस नई मुश्किल को जो कि रियाजी की है उसको हल कर सकूं। इसी वजह से आप देखें, इल्म रियाजी की जब आपको मुश्किल पेश आती है तो आप रियाजी की मालूमात में सोचना शुरू करते हैं, अदद के अंदर आपकी फिक्र जो है वो गर्दिश करती है। ऐसा नहीं है कि मसलन वो कायनात की किसी और चीज में गर्दिश करने लग जाए, नहीं। बस चौथा मरहला जो कि फिक्र का दूसरा मरहला है, वो ये है कि मालूमात के जो स्टोर के अंदर अकल का क्या है हरकत करना और कोशिश करना ताकि ऐसी मालूमात को अखज कर सके जो मददगार साबित हो मजहूल को मालूम बदलने में। अब पांचवा मरहला क्या हो जाएगा जो कि फिक्र का तीसरा मरहला है, जब आपने अपने स्टोर रूम के अंदर मालूम को पा लिया कि जो आकर हमारी मुश्किल को हल कर सकता है, मददगार साबित हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपका मजहूल मालूम में बदल गया है। पर पांचवा मरहला यह है कि मालूम से मजहूल की तरफ आना, यानी आप उस मालूम को कि जो आपके लिए मददगार साबित हो रहा है उसको उठा के मजहूल के पास आएंगे, मजहूल फौरन मालूम में बदल जाएगा। आप कहेंगे हाँ, इसका जवाब यह है।
मददगार मालूम को उठा के लेके आना मशीन।
मसलन मिसाल देता हूं, कोई बंदा आकर कहे कि 25 जमा 25 कितने होते हैं, आप बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन बच्चा पहले से मालूमात हासिल कर चुका है अदद के बारे में, जमा तफरीक को वो समझ चुका है पहले से। अब उसके सामने आपने एक मुश्किल खड़ी कर दी, आपने कहा कि आपने अभी तक तो 1 जमा 2, 2 जमा 2, 4 जमा 4 को हासिल किया है, अब मेरे लिए हल करके दिखाओ कि 25 जमा 25 कितने होते हैं। अब वो बच्चा क्या कर, बच्चे के सामने मुश्किल आ गई, मुश्किल की नौीयत पता चल गई कि भाई ये रियाजी के साथ ताल्लुक रखती है, मैंने रियाजी की मालूमात से मदद लेनी है जाकर, तो बच्चे का जहन क्या करेगा, उसके उस मजहूल से मालूम की तरफ, कहां कौन से मालूम की तरफ जाएगा, रियाजी की मालूमात की तरफ। रियाजी की मालूमात में से क्या है, इस्तेफादा करेगा, उससे मदद तलब करेगा कि वो आकर इसकी इस मजहूल को मालूम में बदलें। तो जैसे ही वो रियाजी की मालूमात में जाकर जस्तजू करेगा, फौरन उसको मालूमात मिल जाएंगे, उसके जरिए वो आकर 25 जमा 25 को 50 का जवाब दे देगा। ये 25 जमा 25 को 50 का जवाब देना, यानी अब मालूम से मजहूल की तरफ आके उसको मालूम में बदल दिया आपने, मालूम में बदल दिया आपने। ये है फिक्र के मराहिल। हर बशर बिला इस्तिस्ना इन मराहिल को तय करता है, और बाज औकात ये मराहिल पलक झपकने की मुद्दत से भी कम अरसे में तय हो जाते हैं। इसी वजह से इंसान इनके बारे में तवज्जो नहीं रखता, और अभी मैं जो ये बयान कर रहा हूं, जो पहली दफा ये बातें सुन रहे हैं, वो अगर ये पहले बातें उनको कर दे, मतलब कभी ये सोचे, यानी बयान करने में आधा घंटा लग गया है लेकिन ये अमल जो है वो सेकेंडों के भी सेकेंडों में ये तय हो जाते हैं सारे। बाज औकात लंबे अरसे में होते हैं, जब मुश्किल ज्यादा पेचीदा हो, ज्यादा मुश्किल हो, उसको हल करने में टाइम लगता है, लेकिन बाज औकात इंसान इतना मुसल्लत होता है उलूम के अंदर कि जैसे ही मुश्किल पेश आती है इंसान तेजी से उस मुश्किल को हल कर लेता है। बर्राज़े, बस पहले दो मरहले मुकदमा, अगले तीन मरहले फिक्र हैं, फिक्र के मराहल हैं। और फिक्र की तारीफ क्या है? मजहूल को मालूम में तब्दील करने के लिए जहन की कोशिश बतलाश। दुरुस्त है। ये था हमारा आज का पहला, यानी किताब के एतबार से पहला दर्स है, और वैसे जो हमने शुरू किया उसमें तीसरा दर्स है। इसके बाद आ जाता है मौजू इल्म मंतिक के बारे में, कि इसको भी थोड़ी सी तफसील की जरूरत है। इसको मुख्तसर अंदाज में बयान नहीं कर सकते, तो इसको
जी
फिर बाद में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।